आयु आरिशा से नाराज होकर गार्डन एरिया में चली गई। आरिशा का एटीट्यूड बिल्कुल आरव की तरह था। वो आयु को परेशान जरूर करती थी, लेकिन उसकी नाराजगी भी नहीं सह सकती थी। आयु के नाराज होकर जाने पर आरिशा के चेहरे पर मायूसी के भाव थे। आरिशा जल्दी से दौड़कर आयु के पीछे जाने लगी। ज्ञान जी ने उसे दौड़ते हुए देखा तो पकड़कर कहा, अभी तक नहीं मानी वो? नहीं दादू, आपने तो कहा था मॉम मान जाएगी। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं जिससे मैं उनके लिए नए कपड़े खरीद कर दे दूं और वो मुझ पर गुस्सा ना हो? आरिशा ने मासूमियत से पूछा। ज्ञान जी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन हम शॉपिंग करने जाएंगे, फिर वापस लौटेंगे, उतने में काफ़ी देर हो जाएगी। उसे जंक खाना बहुत पसंद है, मैं इंस्टेंट तुम्हें वो बनाकर देता हूँ, उसके पास लेकर जाना, फिर वो मान जाए। नहीं, जंक नहीं, वो अनहेल्दी होता है। ऐसा कीजिए, आप मुझे हॉट चॉकलेट बनाकर दीजिए, वो भी मॉम को बहुत पसंद है, आरिशा ने जवाब दिया। आरव की तरह आरिशा को भी जंक फूड पसंद नहीं था। ज्ञान जी ने उनकी बात पर हामी भरी। वो जल्दी से किचन एरिया में गए और आयु के लिए हॉट चॉकलेट तैयार करके दिया। उनके हाथ में सिर्फ एक कप था तो आरिशा उन्हें घूरते हुए बोली, सिर्फ एक मग? तो तुम्हें क्या पूरे मोहल्ले को हॉट चॉकलेट की पार्टी देनी है जो मैं बहुत सारे बनाऊं? ज्ञान जी ने पूछा। आरिशा ज्ञान जी के पास आई और उन्हें नीचे झुकने का इशारा किया। जैसे ही वो उसके पास बैठे, आरिशा ने उनके सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है आप में दादू? मॉम बड़ी है, वो हॉट चॉकलेट के बिना भी रह सकती है, लेकिन मैं नहीं, मेरे लिए भी बनाना चाहिए था। अब मैं उन्हें पीते हुए देखूंगी तो मेरा भी मन करेगा। आपकी हरकतें भी बिल्कुल मेरी तरह है, बस नाराज करना आता है, मनाना नहीं। लेकिन तुमने ही तो कहा था सिर्फ मॉम के लिए बनाना है, हद हो गई, जाकर पहले उसे मनाओ, अपनी फरमाइशें बाद में पूरी करवाना, ज्ञान जी ने सिर हिलाकर कहा और आरिशा के हाथ में वो मग पकड़ा दिया। आरिशा ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसे पकड़ा और धीमे कदमों से चलकर बाहर आ रही थी। उसने देखा आयु बाहर रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई थी, उसकी आंखें बंद थीं। आरिशा उसके पास गई और जाकर आयु की तरफ मुंह करके उसकी गोद में बैठ गई। अचानक उसके आने पर आयु ने आंखें खोली। आरिशा ने बिना कुछ बोले हॉट चॉकलेट का मग उसकी तरफ कर दिया। आयु ने घूर कर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी ये सब ट्रिक्स काम नहीं आने वाली हैं, मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं अपने लिए शॉपिंग करूं। बहुत मुश्किल से मैंने वो सारा स्टफ़ टाइम निकालकर खरीदा था और तुमने सब बर्बाद कर दिया। ओके, तो मैं आपके लिए शॉपिंग करूंगी और अच्छे कपड़े लेकर आऊंगी, फिर तो आप मुझे माफ़ कर देंगी ना? आरिशा ने कहा, मुझे तुम्हारे सिलेक्ट किए हुए कपड़े नहीं पहनने हैं, तुम अभी बच्ची हो और तुम्हें ये सब नहीं समझ आता है। जाकर अपना होमवर्क कम्प्लीट करो, मुझे कुछ देर अकेले रहना है, और इस हॉट चॉकलेट के लिए थैंक यू सो मच, आयु ने जवाब दिया। आयु जैसे ही उसका सिप लेने को हुई, आरिशा जल्दी से बोली, दादू ने सिर्फ एक ही बनाया है तो आपको मुझसे शेयर करना होगा। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी। उसके हाँ कहते ही आरिशा उसके सीने के लिपट गई। वो आयु की तरफ सिर उठाकर बोली, अब माफ़ कर दीजिए, आपसे गलतियाँ नहीं होती क्या? मैं भी तो आपकी गलतियों को माफ़ करती हूँ, इनफैक्ट आप ज़्यादा गलतियाँ करती हो। हम दोनों गलतियाँ कर सकते हैं, पर आप इस तरह मुझसे दूर मत रहा करो। हम दादू को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और ना ही आप हम दोनों को छोड़कर किसी और घर में जाओगी। वो मैंने ऐसे ही कह दिया था आरू, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, आयु ने जवाब दिया और उसके बालों को सहलाने लगी। आयु हॉट चॉकलेट पी रही थी और बीच बीच में आरिशा को भी पिला रही थी। आयु का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखकर आरिशा ने पूछा, तो आप मान गई हैं? आयु ने हाँ में सिर हिलाया और आरिशा के फॉरहेड पर किस किया। आरिशा आयु को एकटक देख रही थी। वो अचानक से बोली, मॉम आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपकी आईज मुझे सबसे अच्छी लगती हैं। तुम्हारी आईज भी बहुत प्रिटी हैं आरू, बिल्कुल अपने डैड। आयु बोलते हुए रुक गई। वो आरिशा के सामने इमोशनल नहीं होना चाहती थी। उसने एक छोटी सी स्माइल दी और आरिशा की आंखों पर किस करके कहा, आगे से मेरे कपड़े और बालों से दूर रहना, प्रॉमिस? आरिशा ने कहा। आरिशा और आयु एक दूसरे के गले लगी हुई थी। आयु का मूड भी ठीक हो गया था तो वो मुस्कुराते हुए उससे बात कर रही थी। उसी वक्त लक्षित हॉस्पिटल से वापस लौटा। कार पार्क करने के बाद जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसने आयु और आरिशा को साथ में गार्डन एरिया में देखा। उन्हें देखते हुए लक्षित ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, शी इज सो क्यूट, स्पेशली हर आइज, जरूर इसके डैड जैसी होगी। आयु और आरिशा को साथ में देखकर लक्षित को कभी कभी अपनी फैमिली की कमी महसूस होती थी। उसने कुछ देर उनको देखा और फिर अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ आरव खुराना इंडस्ट्रीज में था। उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था क्योंकि सुबह आर्य का भी मूड अपसेट था। भले ही उसने कहा ना हो, लेकिन उसकी परेशानी का कारण अब आरव समझ चुका था। आरव ने घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 1:30 बज रहे थे। वो उठकर बाहर आया, तभी उसे कबीर मिला और उसने कहा, मैं आपके पास ही आ रहा था, लंच में क्या ऑर्डर करना है? मैं आर्य के स्कूल जा रहा हूँ उसे लेने के लिए, रास्ते में उसके साथ कुछ खा लूंगा, आरव ने जवाब दिया। आरव की आवाज बुझी हुई थी, जिससे कबीर समझ गया कि वो परेशान है। कबीर ने उससे पूछा, कुछ हुआ है क्या? आर्य को तो स्कूल लेने के लिए मैं जाता हूँ और मैं चला जाऊंगा। आरव की जिंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं था जो कबीर से छुपा हुआ हो, उसने इस बार भी सब बताते हुए कहा। वो आयु को मिस करता है कबीर, मुझे आयु को ढूंढना है, मैं इस बारे में तुमसे बात करने ही वाला था, आरव ने सीधे सीधे कहा। हम जानते हैं वो कहाँ हो सकती है, फैज हमें कभी उनसे नहीं मिलने देगा, कबीर ने धीरे से कहा। आरव ने जवाब में कहा, वो उसके पास नहीं है, मैं मीटिंग में उससे मिला था और उस साइकोपैथ ने यही कहा था कि उसने आयु को जाने दिया, वो इस वक्त कहीं और है और इस बारे में ओबेरॉय फैमिली भी नहीं जानती। मुझे उसे ढूंढना है कबीर, हर हाल में, इसमें सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तो अपने सारे सोर्सेज लगाओ और पता करो कि मिसेस खुराना कहाँ है। वो अब तक नहीं जानती कि हमारा बेटा जिंदा है, अब तक मैं चाहता भी नहीं था कि वो इस बारे में जाने, तभी मैंने किसी को भी सोशल मीडिया अकाउंट या कहीं पर भी आर्या की फोटो नहीं लगाने दी, मीडिया से भी उसे दूर रखा, लेकिन अब और नहीं, मैं आर्या का सहारा नहीं लेना चाहता, लेकिन जरूरत पड़े तो आर्या के जरिए ही आयु को बुलाना होगा। आरव आयु को ढूंढना चाहता था, ये सुनकर कबीर को भी बहुत खुशी हुई, उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, मुझे बस 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं पता कर लूंगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि ओबेरॉय फैमिली के किसी मेंबर को पता ना हो कि मैम कहाँ है, वी विल फाइंड हर। कबीर से बात करने के बाद आरव आर्या को लेने चला गया था, तो वहीं कबीर इस वक्त आरव के मताए हुए काम पर लग गया था, उसने अपनी गाड़ी ली और कहीं जाने के लिए निकल गया। आर्या की नाराजगी दूर करने के लिए आरव अपना काम छोड़कर उसे लेने के लिए स्कूल में पहुंचा। आर्या को लगा कि हमेशा की तरह कबीर उसे लेने आएगा, लेकिन जब उसने आरव को देखा तो उसकी नजरें नीची हो गईं। उसके पास में एक लड़का खड़ा था, आर्या उसके पास जल्दी से गया और उससे कहा, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं करने वाला, कुछ और हेल्प चाहिए तो बोल दो, उस लड़के ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मुझे तुमसे अपना होमवर्क नहीं करवाना है, मेरे डैड मेरे पास आए तब तुम्हें मुझसे ये कहना है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने के लिए क्यों नहीं आती है, आर्या ने उसे जल्दी जल्दी में बताया।
वो लड़का कन्फ्यूजन से आर्या की तरफ देखने लगा, फिर वो उससे बोला, मेरे डैड ने बताया था कि तुम्हारे मॉम डैड अलग रहते हैं, तो वो तुम्हें लेने के लिए क्यों आएगी? तुम्हारे डैड भी तुम्हें लेने के लिए नहीं आते, हमेशा तुम्हारे अंकल या चाचू ही तुम्हें छोड़ने के लिए आते हैं, क्या तुम अपनी मॉम को मिस करते हो? वो लड़का लगातार बोले जा रहा था। तब तक आरव भी आर्या के पास पहुंच चुका था, उसने उसकी बातें सुन ली थीं। उसकी बातें सुनकर आरव ने धीरे से कहा, ये आजकल की जेनरेशन कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं हो गई है, इसे क्या लेना देना है कि मेरा बेटा अपनी मॉम को मिस करे या डैड को, बच्चा है या फिर मोहल्ले की आंटी जो ताने मार रहा है? उसकी बातें सुनकर आरव को गुस्सा भी आ रहा था। आरव ने जल्दी से आर्या को गोद में उठाया और उस बच्चे की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, आगे से तुम मेरे बेटे से दूर रहोगे और इसके सामने उल्टी सीधी बातें नहीं करोगे, तुम्हें ऐसी बातें सिखाता कौन है, और तुम्हें क्या लेना देना है कि इसकी मॉम इसे लेने आए या डैड? अगर मैंने फिर से तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनी तो प्रिंसिपल से कंप्लेंट करके तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। लेकिन मुझे तो आर्या नहीं, वो लड़का अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रहा था, तभी आर्या जल्दी से आरव से बोला, डैड प्लीज जल्दी चलिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आर्या के कहने पर आरव दूसरी तरफ आ गया। उसके गाड़ी के पास आते ही आर्या ने कहा, आप उस बच्चे को बिल्कुल किसी दूसरे बच्चे की तरह डरा रहे थे, प्रिंसिपल की धमकी कौन देता है डैड, आजकल तो बच्चे भी ऐसी धमकी नहीं देते, और वो क्या गलत कह रहा था, मुझे अयान चाचू या कबीर अंकल ही स्कूल ड्रॉप या पिक करने आते हैं, आपको मेरे लिए टाइम नहीं है, मेरी मॉम मेरे पास नहीं है, तो सब मुझे ताने तो मारेंगे ही ना, आर्या जानबूझकर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा था। आरव ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, इतना ओवर हाइप करने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से समझ आती है तुम्हारी हरकतें, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बच्चों को ऐसा बोलने के लिए तुमने ही कहा हो? बोलते हुए आरव रुक गया, फिर उसने आगे कहा, आई एम टेलिंग यू आर्या, आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, सच सच बताओ, अयान ने तुम्हें कुछ कहा क्या? बताओ मुझे, अयान ने तुम्हें बताया ना तुम्हारी मॉम एक न्यूरोसर्जन थी, तभी तुम्हें न्यूरोसर्जन बनना है? आरव को आर्या की बातों से समझ आ गया था कि वो ऐसा खुद से नहीं कह रहा है। आर्या की नज़रें झुक गई थीं, इस वक्त उसे आरव से डर लग रहा था। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, मुझे अब कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप घर चलो और आज के बाद तुम्हें स्कूल से लाने और ले जाने का काम मेरा ही होगा, किसी से बात नहीं करोगे तुम, तुम अपनी मॉम को मिस नहीं कर रहे हो बल्कि औरों के कहने पर ऐसा बिहेव कर रहे हो, तुम्हारी हरकतें पहले नॉर्मल होती थीं लेकिन एक हफ्ते से तुम ज्यादा ही मॉम मॉम की रट लगाकर बैठे हो, और अब मुझे इसका कारण भी समझ आ रहा है। ओह शिट, पकड़े गए, चाचू को बताना होगा हमारा प्लान फ्लॉप हो गया है, मैंने उनसे बस मॉम के बारे में पूछा था और उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था, डैड इतने स्मार्ट कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी पकड़ लिया। आर्या ने धीरे से कहा। आरव गाड़ी के अंदर बैठ चुका था जबकि आर्या अभी भी बाहर ही था। आरव ने गुस्से में हॉर्न बजाया तो आर्या दौड़कर जल्दी से उसके पास आकर बैठ गया। आरव आर्या को लेकर खुराना मेंशन पहुंच चुका था। पूरे रास्ते उसने आर्या से बात नहीं की थी क्योंकि स्कूल में जो भी हुआ उससे आरव को आर्या पर गुस्सा आ रहा था। जैसे ही आरव आर्या को छोड़कर वापस जाने लगा, आर्या ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, आई एम सॉरी डैड, आगे से मैं उनका नाम नहीं लूंगा। नेक्स्ट वीक से मेरे वेकेशन शुरू हो जाएंगे, मुझे बाहर घूमने जाना है। सिमरन मामी ने कहा था कि वो सब वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे उनके साथ भेज दोगे? किसी के साथ कहीं भी नहीं जाना है, जाकर रूम में बैठो, होमवर्क कंप्लीट करो। आज से तुम किसी से नहीं मिलोगे, कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब कर रखा है उन लोगों ने तुम्हारा। गुस्से में आरव ने तुरंत मना कर दिया था और वहां से चला गया। आर्या ने भी आगे कुछ नहीं कहा, बस वो आरव के रूड बिहेव करने पर उदास हो गया था। वहीं लंदन में आयु की हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी होती थी। पूरा दिन घर पर आराम करने के बाद आयु हॉस्पिटल पहुंची। रात को एक्स्ट्रा ड्यूटी देने की वजह से लक्षित भी घर पर ही था। ज्यादातर वो दोनों हॉस्पिटल साथ ही पहुंचते थे, लेकिन अलग अलग गाड़ी में। एक बार फिर लक्षित और आयु एक साथ ही हॉस्पिटल पहुंचे थे। दोनों अंदर की तरफ जा रहे थे तब लक्षित ने आयु के पास आकर कहा, तुम्हारी बेटी बहुत क्यूट है, मुझे वो अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जैन, आयु ने फॉर्मली जवाब दिया। आयु लक्षित से बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो तेज कदमों से चलकर आगे जाने को हुई। तभी लक्षित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उससे पूछा, आई नो ये काफी इनफॉर्मल होगा, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया क्या? मैंने तुम्हें ज्यादातर परेशान ही देखा है और तुम्हारी बेटी भी है। लक्षित नहीं जानता था कि उसने अचानक ये सवाल क्यों पूछा। पूछने के बाद उसे खुद पर अफसोस भी हो रहा था। वो जल्दी से बोला, आई एम सो सॉरी डॉक्टर, वो मैं इतना इनफॉर्मल नहीं होना चाहता था, पर आज सुबह तुम दोनों को साथ देखा तो बस पूछ लिया। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है डॉक्टर जैन, वो मेरे बॉयफ्रेंड की नहीं मेरे हस्बैंड की बेटी है और किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया है। अब आपके सवाल जवाब खत्म हो गए हैं तो मैं अंदर जाकर अपना काम करूं? आयु ने सिर हिलाकर पूछा, जिस पर लक्षित ने हाँ में सिर हिला दिया। आयु अंदर चली गई। उसके जाने के बाद लक्षित ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस भरते हुए कहा, ओ गॉड, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। ऐसे ही इन्हें गलतफहमी होती है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। मैं इसमें इंटरेस्टेड क्यों होऊंगा? बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। लक्षित ना चाहते हुए भी आयु की तरफ खींचा चला जाता था। उसे आयु से बात भी करनी होती थी और बात करने के बाद वो खुद को यही तसल्ली देता था कि उसे आयु पसंद नहीं है। सनम ने उन दोनों की बातें सुन ली और खासकर लक्षित की। उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी और उसने धीरे से कहा, अच्छा तो ये बात है, डॉक्टर जैन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उसे आयु पसंद है। डोंट वरी, मैं कब काम आऊंगी?